लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहाँ तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वचनों में नहीं वरन कार्यों में होती है। हम अपने मानवीय जीवन में जिन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते उनके लिए निस्वार्थ भावना से उन अच्छे और भले कार्यों को करते हैं जिनके द्वारा हमारे चाहने वालों की भलाई होती है। हम अपने सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति में किए गए कार्यों का हिसाब किताब नहीं करते हैं और न ही उनके लिए किसी कीमत की मांग करते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम अपनी परवाह किए बिना अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपने प्रेमी या चाहने वालों के लिए अर्पित कर देता है। इस भांति हमारे कार्य न केवल हमारे हृदय की भावना को व्यक्त करते बल्कि अपने उन कार्यों के द्वारा हम व्यक्ति के प्रति अपने व्यक्तिगत समर्पण को व्यक्त करते हैं। अतः मानव के द्वारा किया गया निश्चल कार्य हृदय के प्रेम पूर्ण संबंध को घोषित करता है, जहां हम उन्हें एकता और एकजुटता में एक दूसरे के साथ सदैव जुड़ा हुआ पाते हैं। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पवित्र त्रित्वमय ईश्वर का महोत्सव मनाती है। त्रित्वमय ईश्वर हमारे लिए सदैव एक वृहद रहस्य की विषय वस्तु रही है, जिसे हम अपने ख्रिस्तीय विश्वास के अनुरूप एक ईश्वर में तीन जन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर को प्रेम के एक अटूट संबंध में एक दूसरे के संग सदैव संयुक्त पाते हैं। वे हमारे लिए प्रेम के स्रोत हैं, जो हमें दूसरों के लिए प्रेम का माध्यम बनने का आह्वान करते हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर के महोत्सव आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए उस त्रित्वमय ईश्वर की उपस्थिति और उनके वचनों को ग्रहण करें, जिससे हम अपने जीवन के रहस्य को समझ सकें और उसे अर्थपूर्ण तरीके से जीने के योग्य बन सकें।
तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने बुलाए जाने पर संदेह करने के भाव से ऊपर उठने हेतु मदद करें, जिससे हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण ईश्वरीय महिमा में जीने के योग्य बन सकें, जिसके लिए हमें यह जीवन का वरदान मिला है। श्रोताओ, विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारा आह्वान अपने जीवन के अतीत क्षणों का अवलोकन करने हेतु निमंत्रण देता है। हमारा जीवन कहाँ था, हम कैसे थे, हम क्या थे और अभी वर्तमान में हमारा जीवन कैसे है, हम कहाँ हैं और कैसे हैं। संत पापा फ्रांसिस हमें जीवन की गहराई में उतरने हेतु अपनी जड़ों की खोज करने को कहते हैं, विशेषकर हमारे जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम कहाँ से आते हैं, हम कैसे थे और क्या करते थे इत्यादि इत्यादि। श्रोताओं, यदि हम अपने लिए इन सवालों का उत्तर दें तो यह हमें इस बात से रूबरू कराएगा कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, किसने हमारी सुधि ली है और कैसे हम अपने जीवन में सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। नबी मूसा इसराइली जनता को उनके अतीत की याद दिलाते हैं कि किस तरह याहवे ने उन्हें अपना बाहुबल प्रदर्शित किया और चमत्कारिक ढंग से उन्हें शत्रुओं के शक्तिशाली हाथों से बचाकर बाहर निकाला। इसराइली जनता जो मिस्र की गुलामी में अत्यंत दुख का दंश झेल रही थी, ईश्वर ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि की, इसलिए नहीं कि वे अपने में महान और उनके प्रेम के योग्य थे, बल्कि इसलिए कि ईश्वर प्रेम के स्रोत हैं, जो अपने प्रेम में स्वभाव के कारण सदैव अपनी सृष्टि को अतुल्य प्रेम करते और हम सबों के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। श्रोताओं, ईश्वर के प्रेम को हम अपने व्यक्तिगत जीवन का पुनरावलोकन करते हुए देख और समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने हमें अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बुराइयों और हानिकारक घटनाओं से सुरक्षित रखा है। उन्होंने हमें मृत्यु और पाप में स्थिति से बचाकर जीवन की राह में अग्रसर किया है, जिससे हम उन्हें अपने जीवन का मालिक मान सकें और उनकी महिमा और स्तुति कर सकें। उनके अचरज भरे कार्य हमें इस बात का ठोस प्रमाण देते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी पर उनसे बढ़कर और कोई नहीं जिसके सामने हम शीश नवाएं। ईश्वर ने हमें अपनी संतान की तरह प्रेम किया है और जिस तरह एक माता पिता अपने संतानों को जीवन में विकास करने हेतु अच्छे कायदे और कानून बतलाते हैं, उसी तरह ईश्वर ने हमें भी अपने नियमों को दिया है जिसका अनुपालन कर उनके संग प्रेम के संबंध में सदा बने रहते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ ईश्वर के साथ हमारे संबंध को दत्तक पुत्र स्वरूप घोषित करता है, जहां हम यीशु ख्रिस्त में पिता के संतान बनते हैं। ईश्वरीय आत्मा से संचालित होने वाले सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने सृष्टि के शुरू से ही हमें अपना आत्मा प्रदान किया है, जो हमारे हृदय के अंतस्थल में पुकारता और कहता है, अब्बा हे पिता। इस तरह हम यीशु ख्रिस्त की भांति स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, जो हमें विरासत में मिली है, क्योंकि हम बेटे की भांति पिता के कार्यों में सहभागी होने हेतु बुलाए गए हैं, जिसके कारण हमें बेटे की तरह दुख सहना होता है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार ईश्वर की संतान होने के तथ्य को और भी स्पष्ट रूप में हमारे लिए व्यक्त करता है, जहां हम त्रित्व में ईश्वर के कार्यों को पुत्र पुत्रियों की भांति सारी दुनिया में करने हेतु भेजे जाते हैं, जिन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी पिता ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को प्रदान किया था, उन्हीं कार्यों की जिम्मेदारी वे हमें भी देते हैं। बपतिस्मा में हम सबों को पवित्र आत्मा का पान कराया गया है, जिसके द्वारा हम सभी ईश्वर के संतान बनते हैं। हमारा बपतिस्मा हमारे लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर के प्रेम को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वरीय आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करने और प्रेम में जीवन का साक्ष्य देने हेतु भेजे जाते हैं। यीशु ख्रिस्त ने यर्दन नदी में बपतिस्मा के उपरांत पिता के कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने अपने जीवन में पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उनकी आज्ञाओं को अपने ठोस कार्यों में व्यक्त करते हुए हमारे लिए साक्ष्य दिया है। यीशु ख्रिस्त ने हमें अपना शिष्य बनाया और वे हमें पूरे राष्ट्र को बपतिस्मा के माध्यम शिष्य बनाने हेतु भेजते हैं, अर्थात बपतिस्मा में हमें जो कृपाएं मिली हैं, वे हमें उन कृपाओं को दूसरों के संग साझा करने हेतु भेजते हैं। वे हमें प्रेम का जीवन जीने हेतु दुनिया में भेजते हैं, जिसे हमें अपने कार्यों में व्यक्त करने की जरूरत है, जैसे कि यीशु ख्रिस्त ने स्वयं किया है। आइए हम त्रित्व में ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपाओं से पोषित करें, जिससे हम दुनिया में अपने भेजे जाने के अर्थ को समझ सकें और अपने जीवन के द्वारा बपतिस्मा की कृपाओं का प्रेम पूर्ण साक्ष्य दूसरों को दे सकें, जिनके द्वारा त्रित्व में ईश्वरीय नाम की महिमा होती है।
जिसने दिया ये जीवन है हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। वो जीवन दे उसकी करे हम जय जय का। जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मानव स्वभाव से पाप की ओर झुका है, फिर भी वह अच्छाई, भलाई और सच्चाई के रास्ते पर दृढ़ता से चल सकता है, यदि वह पवित्र आत्मा से संचालित हो। प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आइए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। संत पापा फ्रांसिस ने 29 मई के ट्वीट संदेश में लिखा, पवित्र आत्मा हमें प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है, न केवल उन्हें जिन्हें हम प्यार करते और जो हमारे समान सोचते, बल्कि सभी को, जैसा कि यीशु ने सिखलाया है। वे हमारे शत्रुओं और हमारे साथ जिन्होंने बुरा व्यवहार किया है उनको क्षमा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। वे हमें प्रेम में सक्रिय और रचनात्मक होने के लिए प्रेरित करते हैं। कैथोलिक कलीसिया पेंतेकोस्त महापर्व के बाद इस रविवार को त्रिएक ईश्वर का महापर्व मनाएगी। पौत्र त्रित्वमय ईश्वर ख्रिस्त धर्म की पहली शताब्दी से ही कई कलाकारों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पोंटिफिकल लातेरन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं लातरीनी तन्नेल आर्ते के लेखक मारियो दला बेल्लो ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि रोम के विया लातिना स्थित कटाकोम में चौथी शताब्दी की पहली तस्वीर है। तस्वीर में तीन दूत हैं जो अब्राहम को दिखाई दिए थे। कलीसिया के धर्माचार्य इसमें त्रित्वमय ईश्वर का स्वरूप देखते हैं। कला के पूरे इतिहास में पौत्र त्रित्वमय ईश्वर की छवि एक वयोवृद्ध पिता, एक युवा पुत्र और कपोत के रूप में पौत्र आत्मा को दर्शाया गया है। ये तीनों आकृतियां ख्रिस्त के बपतिस्मा, उनके रूपांतरण और माता मरियम को रानी का मुकुट प्रदान किए जाने के समय भी प्रकट होते हैं। इटली के आत्री स्थित महागिरजाघर में तीन सिरों वाले एक व्यक्ति का चित्र है जो दुर्लभ है। 17वीं शताब्दी में पोप पॉल पांचवें ने इस छवि को यह कहकर मना कर दिया था कि यह मूर्ति पूजकों के देवताओं की छवि से बहुत करीब है। महिमा के सिंहासन के दृश्य का प्रचार किया जा सकता है, जिसमें पिता दुनिया को क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की ओर दिखाते हैं, जबकि पौत्र आत्मा कपोत के रूप में आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आगामी 2021 संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के आलोक में वैटिकन के राज्य सचिवालय FAO, IFAD और WFP के लिए परमधम पीठ के स्थायी मिशन, समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठ परिषद एवं खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले वैटिकन COVID-19 आयोग अपने साझेदारों के साथ वेबिनार की एक श्रृंखला जारी कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा जीवन के लिए खाद्य, खाद्य न्याय, सभी के लिए भोजन, संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी से प्रेरित या वेबिनार श्रृंखला प्रस्तुत करेगा कि किस तरह एक अभिन्न पारिस्थितिकी एक प्रतिमान जो सामाजिक प्रणालियों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच परस्पर संबंधों पर विचार करता है, कोविड 19 के बाद भविष्य में खाद्य प्रणालियों में सुधार को प्रेरित कर सकता है। यह इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कलीसिया एवं अन्य संस्था किस तरह आम घर की देखभाल, भुखमरी दूर करने, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान एवं सामाजिक संपत्ति की सेवा की दिशा में खाद्य प्रणालियों के इस परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे।
संत पापा फ्रांसिस ने सिस्टर नॉर्मा पिमेंटल एमजे को एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले लैटिन अमेरिकी प्रवासियों का स्वागत करने के लिए उन्हें और उनकी टीम के काम की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। सिस्टर नॉर्मा पिमेंटल ने 3 मई को संत पापा को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने रियो ग्रांदे घाटी के कैथोलिक चैरिटी के काम का वर्णन किया था, जो मेक्सिको के साथ दक्षिणी अमेरिकी सीमा पर स्थित है। पत्र के जवाब में संत पापा फ्रांसिस ने मेक्सिकन अमेरिकी धर्म बहन को कहा, आप और आपकी पूरी टीम जो कर रही है उनके लिए धन्यवाद। बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले इन प्रवासियों का स्वागत करने और उनके लिए काम करने हेतु धन्यवाद। कुछ अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए वे अपने देश से बाहर निकलते हैं, जबकि कुछ अपने देश में हो रहे सामाजिक अत्याचार के कारण भागते हैं। इन प्रवासियों का स्वागत किया जाना चाहिए, अर्थात उन्हें स्वागत, संरक्षण, साथ और एकीकृत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्सास की दक्षिणी सीमा पर कैथोलिक चैरिटी उन लोगों की मदद कर रही है जो अधिक सम्मान के साथ जीने के लिए सहायता मांग रहे हैं। संत पापा ने अपने संदेश के अंत में कहा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। उधर ब्रुनेई दारुसलाम के प्रेरितिक विकारियट कार्डिनल कॉर्नेलियस सिम का आज 29 मई को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विकर जनरल मोनसिनियर रॉबर्ट लियोंग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ब्रुनेई दारुसलाम में शनिवार 29 मई को सुबह 8:30 बजे चांग गंग मेमोरियल अस्पताल में कार्डिनल कॉर्नेलियस सिम का निधन हो गया। उन्होंने बताया कि 8 मई को जब कार्डिनल कॉर्नेलियस ताइवान पहुंचे, तभी से कार्डिनल को CHMH अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया और चिकित्सा कर्मचारियों ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया जो बहुत प्रभावी हो सके। वे धीरे धीरे कमजोर होते गए और दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। कार्डिनल कॉर्नेलियस सिम पुरोहित बनने वाले अपने स्थान के दूसरे स्थानीय कैथोलिक पुरोहित हैं। वे चीनी दुसुनियाई वंश के थे। 16 सितंबर 1951 को सेरिया ब्रुनेई में उनका जन्म हुआ। 1988 में उन्होंने ओहियो के स्टुबिनेवेले में फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उनका 26 नवंबर 1989 को पुरोहिताभिषेक हुआ। 21 नवंबर 1997 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें ब्रुनेई के अपोस्टोलिक प्रीफेक्चर का प्रीफेक्ट नियुक्त किया। पिछले साल संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें 28 नवंबर 2020 को कार्डिनल मंडल में शामिल किया। संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया के सबसे अमीर और सबसे छोटे देशों में से एक ब्रुनेई दारुसलाम प्रेरितिक विकारियट के धर्माध्यक्ष सिम को पहला कैथोलिक कार्डिनल नियुक्त किया। ब्रुनेई दारुसलाम प्रेरितिक विकारियट मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई के धर्माध्यक्ष सम्मेलन का हिस्सा है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।